और कितनी सजा देंगे आप उन्हें? एक महीने से वो इस घर में बंद है। दादाजी के इस सवाल पर मिस्टर शेरगिल का जो जवाब आया उसने दादाजी को भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया। ये सजा उसने खुद चुनी है अपने लिए। उसकी जिद ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। मुझे पता है अगर मैंने उसे बाहर जाने की परमिशन दी तो वो वापस उसी लड़के के पास चली जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इसलिए जब तक वो अपनी ये जिद नहीं छोड़ देती, उस लड़के को भूल नहीं जाती, वो ना कहीं जाएगी, ना किसी से बात करेगी और ना ही किसी से मिलेगी। मिस्टर शेरगिल ने अपना फैसला सुना दिया था जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। दादाजी कुछ सेकंड के लिए ये सुनकर अवाक से उन्हें देखते ही रह गए और अफसोस भरे स्वर में बोले, विधान, इतने पत्थर दिल मत बनो, उस मासूम पर इतने जुल्म मत ढाओ। नीरजा की अमानत है वो, उन्हें तकलीफ दोगी तो नीरजा आपको कभी माफ नहीं करेंगी। क्या चाहते हैं आप, मैं अपनी इकलौती बेटी को उस सड़क छाप लड़के के पास भेज दूं, अपने बचपने और बेवकूफी में उसे उसकी जिंदगी बर्बाद करने दूं? मिस्टर शेरगिल ने गुस्से से जबड़े भेज लिए। पता नहीं मानव से उन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों थी कि उसका जिक्र आते ही गुस्से से उनके तन बदन में आग लग जाती थी। शायद उसकी गरीबी या शायद गरीब होने के बाद उसका वो एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस। विधान, इंसान की पहचान उसके पैसे या प्रॉपर्टी से नहीं, उसके संस्कारों और काम से होती है। कब समझेंगे आप ये? ढूंढा था ना अपने बड़े घर और ऊंचे खानदान का लड़का, क्या हुआ? जिसे तुमने नित्या के लिए चुना वो सही था उसके लिए? दादाजी के इस सवाल पर मिस्टर शेरगिल चुप्पी साध गए। यहां वो गलत थे। अपने दोस्त के कहने पर वो जल्दबाजी में अपनी इकलौती बेटी की शादी उनके बेटे से करवाने के लिए तैयार हो गए थे। मिस्टर धनराज ने सोचा कि शायद शादी के बाद तेज सुधर जाए, इनाया के पीछे ना जाए, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवाना चाहते थे। बात पहले से तय थी, मिस्टर शेरगिल को तेज पसंद था, तो उन्होंने भी जल्दबाजी में शादी करवाने पर ना कोई सवाल किया और ना एतराज जताया, जिसका अंजाम था कि नित्या घर से ही भाग गई। आपकी पसंद गलत साबित हुई, अब अपनी बेटी की पसंद पर विश्वास करो, उन्हें एक मौका दो। हम ये नहीं कह रहे कि आज ही उनकी शादी करवा दो, ये आजकल की जेनरेशन है, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, साथ में वक्त बिताएंगे तो एक दूसरे को और अच्छे से जान और समझ पाएंगे, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेंगे, हम भी मिलेंगे उनसे। अभी तो बस बात दोस्ती तक सीमित है, अगर बात आगे बढ़ेगी तो हम सब जांचने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। दादाजी ने बहुत धैर्य और समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल किया था, लेकिन मिस्टर शेरगिल गुस्से से तिलमिला उठे और गरजते हुए बोले, मैं उस दो कौड़ी के लड़के को कभी इस घर का दामाद नहीं बनने दूंगा। अगर नित्या का नाता उससे जुड़ना होगा, भगवान ने नित्या के लिए उन्हें चुना होगा, तो हम या आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाएंगे। फिलहाल तो हम इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहते, हम बस इतना कहने आए थे कि हम नित्या को अपने साथ अपने दोस्त के घर लेकर जा रहे हैं। डैड, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नित्या इस घर से बाहर नहीं जाएगी, उन्होंने सख्ती से विरोध किया, शायद अपने डैड के इंटेंशन समझ गए थे। लेकिन दादाजी भी आज दृढ़ निश्चय करके आए थे, नित्या हमारे साथ जा रही है। घर में बंद रहकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी है, आपका पता नहीं लेकिन हम अपनी बिट्टों से बहुत प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा जरूरी और कोई नहीं हमारे लिए, हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते, इसलिए हम उन्हें आपके बनाए इस पिंजरे से आजाद कर रहे हैं। डैड, आप ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे, अब आपको जो करना है कीजिए, लेकिन एक बात हमारी भी याद रखिए, अब नित्या से जुड़े फैसले आप नहीं हम करेंगे, वो इस घर में बंद नहीं रहेंगी, उनका जो दिल करेगा वो करेंगी, जहां जाना चाहेंगी जाएंगी, जिससे मिलना चाहेंगी मिलेंगी। आप उनके पिता हैं, उनकी भलाई सोच सकते हैं, लेकिन उनके भगवान बनकर उनकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें अपने इशारों पर चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको आज़ादी दी थी जब आपने नीरजा के बारे में हमें बताया तो खुले दिल से उन्हें इस घर में जगह दी थी, वैसे ही अब आपको भी नित्या को उनके हिस्से की आज़ादी देनी होगी, उन्हें भी हक है प्यार करने का, अपना हम सफर खुद चुनने का, ये जिंदगी उनकी है तो फैसले भी उनके ही होने चाहिए। अगर वो किसी को अपने लिए पसंद करती हैं तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है उनकी पसंद को एक मौका दे, ये देखें कि क्या वो शख्स सच में हमारे बिट्टों के काबिल है, और इसका बेस ये नहीं होना चाहिए कि वो किस खानदान से है, कितने पैसे वाला है, हमें देखना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। पैसा आज नहीं है कल आ सकता है, इंसान अगर मेहनती और काबिल हो तो रंग से राजा तक का सफर तय कर सकता है, लेकिन अगर इंसान खराब हुआ तो कितना ही पैसा हो लेकिन नित्या उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। हमें उनके लिए एक सच्चे और अच्छे हमसफर की तलाश करनी चाहिए, जो उन्हें समझे, उनकी कद्र करे, हमारी बिट्टों को प्यार दे, उन्हें फूलों जैसे संभाल कर रखें।
एक ऐसा घर तलाशना चाहिए जहां वो खुश रह सके, जहां उन्हें वो प्यार और अपनापन मिले जिसके लिए वो अब तक तरसती आई हैं। दादाजी रुके। वो जो समझाना चाह रहे थे पता नहीं मिस्टर शेरगिल समझे या नहीं, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन दादाजी की कोशिशें जारी थीं। हम आपके पिता होने के नाते आपको प्यार से समझा रहे हैं, नित्या के साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब वो बगावत पर उतर आएंगी और तब शायद अपनी इस सख्ती, जिद और गुरुग्र में आप अपनी इकलौती बेटी को खो दें। उन्हें कैद करके रखने की कोशिश यही छोड़ दीजिए। जिस चिड़िया को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है वो कभी खुश नहीं रहती, और मौका मिलते ही उस पिंजरे को छोड़कर उड़ जाती है, फिर कभी वापस ना लौटने के लिए। नित्या भी हमारे आंगन की चहकती चिड़िया है, उनके पंखों को उड़ान देना आपकी जिम्मेदारी है। उनकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, कोई उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें हर्ट ना करे, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें उड़ने के लिए खुला आसमान देना आपकी जिम्मेदारी है। एक पिता होने की जिम्मेदारी निभाइए। नित्या पर अपने फैसले थोपना बंद कीजिए। आपकी इस सख्ती और जिद की वजह से आपकी अपनी बेटी के दिल में कहीं आप अपना मुकाम ना खो दें। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि नित्या वहां आ गई, और वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। नित्या ने सहमी निगाहों से मिस्टर शेरगिल को देखा और जाकर दादाजी के पास खड़ी हो गई। दोनों हाथों से उनकी बांह को पकड़ लिया और सर झुका लिया। जाहिर सी बात थी, मिस्टर शेरगिल की नजरों से बच रही थी। मिस्टर शेरगिल ने गौर से उसे देखा। चंद दिनों में उसका चेहरा मुरझा सा गया था, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, शरीर भी कमजोर हो गया था। जीन्स टॉप पहना था उसने, जो पहले उसे ठीक आता था लेकिन अब ढीला था। रूखे बालों को हाई पोनी में बांधा हुआ था। वो गलती से भी उनकी तरफ नहीं देख रही थी, सर झुका था, आंखों पर लरजती पलकों का पहरा था। घबराहट में निचले होंठ को दांतों से चबा रही थी और दादाजी के हाथ को उसने कसके पकड़ा हुआ था। मिस्टर शेरगिल ने अपनी बेटी के चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर देखा। दिल में टीस सी उठी, सीने में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। दादाजी नित्या को लेकर चले गए, लेकिन वो उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। गले से शब्द ही बाहर नहीं निकले, वो बस खामोशी से खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। जैसा कि दादाजी ने कहा था, वो गार्ड को अपने साथ नहीं लेकर गए थे। बस वो ड्राइवर था जो नित्या को मानव के घर से लाते वक्त था, लेकिन गार्ड्स उनके पीछे जरूर गए थे। मिस्टर शेरगिल के ऑर्डर्स थे, जिससे कार में बैठे दोनों शख्स अनजान थे। नित्या खुश थी और बड़ी ही बेसब्री से मानव के पास पहुंचने का वेट कर रही थी। दादाजी बस उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। कार रुकी। नित्या की नजर जैसे ही मानव के घर पर पड़ी, वो खुशी और एक्साइटमेंट से उछल पड़ी, चहकते हुए दादाजी के गले से लग गई।
अपना ख्याल रखना, जब घर जाना हो हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगे आपको लेने। दादाजी ने स्नेह भरा हाथ उसके सर पर रख दिया। नित्या ने झट से सर हिलाया। उनके गाल पर किस करने के बाद उन्हें हाथ हिलाकर बाय किया और कार से बाहर निकल गई। दादू ने उसे जाने कहा तो खुशी से उछलती हुई मानव के घर की तरफ चली गई। कार अब भी वहीं खड़ी थी। दादू नित्या को ही देख रहे थे, शायद उसके अंदर जाने का वेट कर रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। लगता है आप सबने या तो स्टोरी पढ़नी ही छोड़ दी या इंटरेस्ट खत्म हो गया, तभी अब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा।